जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय प्रभुपा जय श्रील प्रभुपा गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौरा हरि बोल
श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की जय पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम एकादशी योगिनी काशी के इस महाउत्सव पर श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि प्रतिक्रिया रहती है हमेशा कि प्रभुपाद जी के व्यास पूजा और एकादशी उत्सवों पर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो जो ये प्रकरण चल रहा है, वैसे मैं इसके बारे में पढ़ तो नहीं पाया, मुरारी कृपा प्रभु ने मुझे मैसेज तो भेजा था पर समय नहीं मिला उसके बारे में पढ़ने का। प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी के जैसा चरित्र है वैसा वर्णन कर सकें। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी जैसे उत्सवों के ऊपर ये प्रभुपाद जी के बारे में क्यों पढ़ा जाता है, एकादशी तो इतना भगवान का उत्सव है, तो इसके अंदर एकादशी वाले दिन तो भगवान के बारे में वर्णन होना चाहिए, योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा क्यों होती है, ऐसा प्रश्न आता है। तो कहते हैं आदि पुराण में भगवान अर्जुन को कहते हैं कृष्ण ये मे भक्त जना पार्था नामे भक्तश्च ते जनः मत भक्तनाम च ये भक्तास्ते मे भक्त तमहमतः। तो भगवान कहते हैं ये मे भक्त जना पार्थ, हे पार्थ जो ये कहता है ये मेरा भक्त है, नामे भक्तश्च ते जनः, हे वो लोग मेरे भक्त नहीं है जो कहते हैं मैं सीधा राधा गोविंद का भक्त हूँ, मत भक्ता नाम तये भक्तस्ते वो मेरा भक्त है जो मे भक्त तमहा मता जो मेरे भक्त का भक्त है ना। चेतन महाप्रभु भी कहते हैं गोपिर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास, भगवान के दास के दास के दास के दास का दास। मुकुंद माला श्रोत में राजा कुलशेखर लिखते हैं भ्रतश्च 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 भ्रतश्च, एक का एक का एक का एक का मैं दास के दास का, 6 बार दास बोला गया। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर विनम्रता आएगी, भगवान के भक्तों के गुणगान को गाएंगे, उतना ज्यादा हम भगवान को समझ सकते हैं। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में इतने सारे भक्तों ने लिखा है कि अगर हम पढ़ने लगे तो हमारी भागवत जो है वो छोटी पड़ जाती है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के बारे में ये प्रभुपाद लीलामृत सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो उनके शिष्य हैं उनके द्वारा लिखा गया, जय श्रील प्रभुपाद भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया, प्रभुपाद ट्रांसजेंडेंटल डायरी हरीश औरी प्रभु के द्वारा लिखा गया, सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा रचित, श्रील प्रभुपाद उवाच श्रुति कीर्ति प्रभु के द्वारा लिखा गया है, माय ग्लोरियस मास्टर भूरिजन प्रभु के द्वारा लिखा गया, ट्रांसेंडेंटल एडवेंचर्स बाय कुर्मा प्रभु, प्रभुपादित राधा दामोदर बाय हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज, उनके एक भक्त ईशान उन्होंने ईशान प्रभु उन्होंने लिखा है आचार्य एक पुस्तक, प्रभुपाद स्टोरीज बाय गोविंद दासी, श्रुति कीर्ति प्रभु ने लिखा है व्हाट इज द डिफिकल्टी, सेनापति भक्त प्रभु जी के द्वारा लिखा गया इस ग्रेस सर साक्षी प्रभु जी के द्वारा, माय प्रभुपाद हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया, इतने सारे भक्त और भी अनेक ग्रंथ हैं प्रभुपाद जी के बारे में। तो भक्त का गुण जो है वो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भक्त के गुणों का गुणगान गाते हैं, है ना। और देखा जाए तो उनसे हम जल्दी से अटैच भी होते हैं, भगवान की लीलाओं से अटैच होना मुश्किल है ना, अजीब सा लगता है इतना बड़ा असुर आया भगवान ने ऐसे ताली बजाई और मर गया, तृणावत की ऐसे करके 2 साल के बच्चे ने गर्दन घोंट दी और वो मर गया समाप्त हो गया, ताल वन में चले जाते हैं तो वहां धेनु का सुर को भगवान पूंछ पकड़ करके उसका वध कर देते हैं, वो इनसे हम अटैच नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो प्रभुपाद हैं ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं ना, उनकी लीलाओं को सुनकर हम उनसे अपना पर्सनल अटैचमेंट कर पाते हैं और अपनी भक्ति में प्रगति कर पाते हैं, हमारी जो निष्ठा है वो बढ़ती है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भक्त चरित्र के बारे में चर्चा करें। कहते हैं कि इस्कॉन जो है वो एक शरीर है और इसके अंदर की आत्मा है श्रील प्रभुपाद। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ग्रंथ पढ़ता हूं लेकिन प्रभुपाद के बारे में पढ़ने का समय नहीं है, तो व्यक्ति सही मायने में ईंटों की बिल्डिंग को इस्कॉन कहता है। इस्कॉन मतलब है जिसमें श्रील प्रभुपाद नाम रूपी आत्मा विराजमान है। किसी शरीर में से आत्मा चली जाए या हम शरीर को छोड़कर चले जाएं तो शरीर क्या है, डेड बॉडी, मृत शरीर, लेकिन उसमें आत्मा है तो वो जीवित है। तो उसी तरह से इस्कॉन में अगर प्रभुपाद है, इस्कॉन में अगर प्रभुपाद कथा है, इस्कॉन में अगर प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ा जा रहा है तो सही मायने में हम इस्कॉन में है, अन्यथा इस्कॉन में नहीं है हम, है ना। बाकी जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और हमारी भक्ति में यही फर्क है कि वो लोग भक्ति करते हैं वो कृष्ण को सीधा पूजते हैं लेकिन हम प्रभुपाद के द्वारा पूजते हैं। इसीलिए वर्तमान आचार्यगण भी कहते हैं कि आने वाले समय में कितने भी आचार्य कितने भी गोस्वामी सन्यासी आएंगे परंतु प्रभुपाद की जो पोजिशन है वो एज इट इज रहने वाली है, क्योंकि प्रभुपाद जी का योगदान जो है वो विरला, जैसे कहते हैं ना विरला, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी कृष्ण भावना भवित को अपने जीवन में अपनाना और प्रचार करना बहुत ही कठिन था प्रभुपाद जी के लिए। तो हम प्रभुपाद जी के इस लीलामृत ग्रंथ से पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसमें फिर चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पर 554 नंबर पेज से जिसका अध्याय का नाम है सदा के लिए उच्च पद पर बने रहो, प्रभुपाद जी ने कहा सदा के लिए उच्च पद पर बने रहो। तो तो यहां पर शुरू करते हैं। वे ऐसी प्रार्थनाएं गाने लगे जिन्हें अन्य कोई नहीं जानता था। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च। उनकी वाणी हारमोनियम के समान मधुर थी और बंगला ताल के सूक्ष्म अंतर से समृद्ध थी। एक विशाल ओक वृक्ष के नीचे गलीचे पर बैठकर उन्होंने रहस्यमयी संस्कृत प्रार्थनाएं गाईं। संस्कृत प्रार्थनाएं वो भी रहस्यमयी। तो भगवान की जो प्रार्थनाएं हैं ये बड़ी रहस्यमयी हैं। आजकल हम देखते हैं लोग नए जो गायक हैं ना, जैसे फिल्मी कलाकार है ना, उनके संगीतों को सुनते हैं, अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, वो लोग भी ऐसे भजन गाते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनके गाने सुनने और प्रभुपाद जी के जो गाने हैं, जो भजन हैं, उसमें क्या भेद है? तो यहाँ लिख रहे हैं रहस्यमयी संस्कृत प्रार्थना, रहस्यमयी। इसमें रहस्य छुपा है भगवान को प्राप्त करने का। अगर हम आचार्य के द्वारा लिखे गए भजनों को ही गाते हैं, आचार्य के द्वारा लिखे गए भजनों को ही सुनते हैं, उन्हीं को उन्हीं की ट्यून में दोहराते हैं, तो हम रहस्यमयी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जय राधा माधव किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा गाया गया, हम सुने म्यूजिकल बहुत अच्छा हो सकता है, रॉक बैंड हो सकता है, ये बैंड वो बैंड, नए नए बैंड आ रहे हैं, लेकिन जब तक प्रभुपाद जी के द्वारा गाए गए भजन या लिखे गए भजन या नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे गए भजन हम पढ़ते या गाते नहीं है, तो हम रहस्य नहीं समझ पाएंगे भगवान को प्राप्त करने का। उनके अनेक अननयों को हरे कृष्ण मंत्र के अतिरिक्त और कोई मंत्र ज्ञात नहीं था। सिर्फ एक ही मंत्र ज्ञात था, हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी जब लंदन में थे तो प्रभुपाद जी नए नए जब लंदन राधा लंदनेश्वर की स्थापना कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी सिर्फ 14 दिन वहां पर रहे, 14 days, और प्रभुपाद जी ने वहां पर एक मंत्र सभी भक्तों को सिखाया। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसा मंत्र श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। तो प्रभुपाद जी जब 14 दिन बाद जाने लगे तो भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप हमें कह रहे हैं कि प्रचार करो, पुस्तक वितरण करो, लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं है, आपने तो हमें सिर्फ एक ही मंत्र सिखाया, हरे कृष्ण माम। तो ऐसा कई बार हम भक्तों को भी लगता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कैसे प्रचार करेंगे, अभी तो हम नए नए भक्त हैं, नवे है ना, तो हम कैसे प्रचार करने जाएं, हमें तो कोई समझेगा ही नहीं, हमें तो कोई जानता ही नहीं है, हम तो श्लोक नहीं बोल सकते, हम तो शास्त्र नहीं जानते, हम कैसे प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो वहां पर उदाहरण दिया वो हमें सबको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आग में फंसा हो और वो ऐसी कंट्री में हो जहां पर उसको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, मान लीजिए हम रशिया में फंस जाए और हम हिंदी में बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, तो क्या कोई बचाएगा हमको? हाँ या ना? कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा? हम आग में जल रहे हैं, उसको दिख तो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, दिख तो रहा है कि आग में फंसा हुआ है और ये तड़प रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। वो जो आदमी के एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके भाव हैं, उसको देख करके बचाएगा नहीं कोई आदमी आग्नि में फंसा हो तो? छोटे बच्चे को बोलना ना आता हो, वो चिल्ला रहा हो रो रहा हो, तो अभी जाके उसे बचाएंगे? तो इसका मतलब हमारे जो भाव हैं वो सबसे ज्यादा मुख्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा आपको मैंने एक मंत्र दिया है हरे कृष्ण महामंत्र, इसको जपने से क्या आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता? कहा जी प्रभुपाद बहुत आनंद आ रहा है। कह रहे बस जब आप आनंद से भरकर अपनी भाषा में किसी को बोलोगे कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र जपिए तो वो व्यक्ति जपेगा, लेकिन आपका चेहरा उदास हो और आप बोले आप भी हरे कृष्ण जपिए ना, कभी कभी जपा करिए सुबह सुबह। जब करते वक्त बोलना नहीं चाहिए और खुद ही जब कर रहा है हरे कृष्णा, फिर बीच में बोल रहा है आप भी जब किए, आप बीच में मत बोला करिए हरे कृष्णा, तो क्या उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा? किसी को भी प्रभाव करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं पहले आचरण करेंगे तो अपने आप बिना कुछ कहे उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। श्रील प्रभुपाद जी का प्रभाव ऐसा है कि प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन में एक माता जी बता रही थी कि प्रभुपाद जी को उन्होंने कभी पर्सनली उनसे वार्तालाप नहीं किया, इंटरेक्शन। हम बोलते हैं ना हमें तो अपने गुरु के साथ में बैठना है, उनकी वपू सेवा करनी है, उनका हाथ पकड़ना है, हमें उनके साथ चलना है, हमें सेवा नहीं मिली हम कैसे प्रचार करेंगे। वो माता जी बताते हैं कि एयरपोर्ट पर प्रभुपाद जी अपने अनुयायियों के साथ, भक्तों के साथ जा रहे थे और सारे भक्त चला रहे थे श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गार्लैंड पहना रहे हैं प्रभुपाद जी को, सब जा रहे हैं। ऐसे होता है ना कभी कोई सन्यासी आते हैं या महाराज आते हैं तो उन लोगों को गार्लैंड्स पहनाकर सीनियर डिवोटी साथ साथ चल रहे होते, सो बाकी जो दूर वाले भक्त हैं वो तो दूर रहते, अरे हम तो कभी भक्ति नहीं बन पाएंगे, हम तो दूर ही रहते हैं। लेकिन वो माता जी कहती हैं, मैंने सिर्फ जोर से चिल्लाया एक बार, और वो भक्त नहीं थी, ऐसी कांग्रीगेशनल डिवोटी मिलने के लिए आ गए, सुना कि एक आचार्य आए हैं जो कि विश्व में जीवन परिवर्तन कर रहे लोगों का, और वो जोर से चिल्लाए, उन्होंने बोला श्रील प्रभुपाद की जय, तो सुना तीन चार बार जब सुना तो शी रिपीटेड, उन्होंने दोहराया उसको, श्रील प्रभुपाद की, बस इतनी उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया श्रील प्रभुपाद की, ऐसे चिल्लाया ना तो प्रभुपाद पलट कर देखे और स्माइल किए, उनकी मुस्कान वो माता जी बोलती है इतनी प्रभावशाली थी, मैंने कहा जीवन में गुरु बनाना है तो इसी व्यक्ति को बनाना है, और उसके बाद कभी मिली भी नहीं, नेवर पर्सनल कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, और उस एक मुस्कान को लेकर माता जी कहती है मैंने अपने 41 साल प्रभुपाद जी को दे दिए, 41 ईयर्स, और इस्कॉन मूवमेंट की सेवा कर रही है, मैं नाम स्मरण नहीं माता जी का। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और इसके अलावा तुम्हें और कोई मंत्र ज्ञात नहीं है, तो मंत्र जपते वक्त हमारा जो अंदर की भावना है वो चेहरे पर व्यक्त होती है। उनके अनन्यायों को हरे कृष्ण मंत्र के अतिरिक्त और कुछ भी याद नहीं था, किंतु वे स्वामी जी को जानते थे कि स्वामी जी ने जो बोला है बस हमें वो करना है, वे ध्यान पूर्वक उन्हें सुनकर लय बनाए हुए थे, जबकि सड़कों पर ट्रक गड़ागड़ रहे थे और दूर कोंगा ढोल बज रहे थे, तो प्रभुपाद जी को देख करके भक्त इतने आकर्षित होते थे कि वो कीर्तन में ज्वाइन कर लेते थे, कीर्तन करते थे और एकदम उत्साही भक्त बन जाते थे। जो ही उन्होंने श्री रूप सागर जातम, श्री रूपम सागर जातम गाया कि कुत्ते पास आ गए, बच्चे देखने लगे, कुछ नकलची लोग उंगलियां उठाने लगे, तो प्रभुपाद जी को देख करके सारे लोग चीटिंग करने लगे उनकी, अरे वाह पुजारी कौन है, किंतु उनकी वाणी संघर्षहीन दृढ़ता से परे थी, उनके शिष्य मंजीरे बजाते रहे और वे अकेले गाते रहे, श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान वितांसा, तो प्रभुपाद अकेले गा रहे थे लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सब फिर भी हाथ उठा रहे थे, इतना सुंदर भाव। जब व्यक्ति भगवान से कनेक्ट होता है, और भगवान कौन है, सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, सबको आकर्षण करने वाले कौन है, कृष्ण, और कोई व्यक्ति कृष्ण से अटैच होगा तो क्या करेगा, सबको आकर्षण करेगा। चुंबक देखिए आपने कभी कैसी होती है, चुंबक के साथ में किसी छोटे से लोहे की एक डंडी को जोड़ के रखो काफी समय तक, तो वो लोहे की डंडी क्या बन जाएगी, चुंबक, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण आ जाएंगे, और फिर उससे किसी छोटे से चुंबक किसी लोहे को पकड़ो तो वो भी अट्रैक्ट होती है। तो हम उस लोहे की तरह है जिस पे जंग लग गया है, और अब हमें जरूरत है प्रभुपाद जी नामक चुंबक से जुड़ने की, और जब ये जंग हटता चला जाएगा हमारे हृदय से, शिष्य राधा गोविंद भगवान की जय, शिष्य सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व गौड़ निताय की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, जब ये हट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, हम भी पहले चुंबक से अटैच होंगे और फिर हमारे द्वारा भी नए लोगों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन हम हमारे अंदर इतना जंग लगा है, ना हम चुंबक से जुड़ते हैं ना हमसे कोई जुड़ता है, हम तो सिर्फ रोते हैं, अरे हमें बोला प्रचार करो, हमसे तो कोई जुड़ता ही नहीं है, वो जुड़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि अभी हम पे जंग लगी है, और जंग हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जंग हटाने के लिए रेगमाल से सफाई करनी पड़ती है ना, जंग हटा देते हैं पूरी एकदम घिस घिस के, तो वो रेगमाल हमें प्रभुपाद जी ने दिया जो कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा भक्तों को और कुछ ज्ञात नहीं था, वो सारे जंग लगी हुई वो लोहे की डंडियां थी जिनके पास में एक रेगमाल था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने गोपियों की प्रिय श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के प्रति विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम की प्रशंसा करते हुए स्तुति गान किया, प्रत्येक शब्द जो कृष्ण के अंतरंग पार्षदों द्वारा सैकड़ों वर्षों से संक्रमित होता आया था गंभीर दिव्य अर्थ से सरोवर था जिसे केवल वही समझते थे, सहगण ललिता श्री विशाखान्विताम्, प्रभुपाद के शिष्य प्रतीक्षा में थे कि वे हरे कृष्ण कीर्तन आरंभ करें, है ना, बड़ा लंबा हो रहा था ना, शुरू किया कहां से, वंदे हम श्री गुरु, सुना है आपने बोला कीर्तन प्रभुपाद जी का, स्लो, पहले पूरा मंगलाचरण गाते हैं फिर अंत में हरे कृष्णा, तो वो वेट कर रहे थे क्योंकि हमें तो सिर्फ हरे कृष्णा आता है, बाकी स्वामी जी जो बोल रहे हैं वो रिपीट नहीं कर पा रहे। यद्यपि उन्हें स्तुति गान करते हुए सुनना बहुत रोमांचकारी भी लग रहा था, लोग आने लगे, प्रभुपाद यही तो चाहते थे कि लोग वहां पर आने लगे, वे चाहते थे कि लोग उनके साथ कीर्तन करें और नाचें, अब उनके अनुयायी भी यही चाहने लगे थे, वे प्रभुपाद के साथ बने रहना चाहते थे। उन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय आनंद आश्रम और वाशिंगटन स्क्वायर में उनके साथ कीर्तन किया। ऐसा लगता था कि स्वामी जी के साथ वे हमेशा यही किया करेंगे और उन्हीं के साथ कहीं जाएंगे, बैठेंगे, बस कीर्तन करेंगे। स्वामी जी भी अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए सदैव बने रहेंगे, ऐसा लग रहा था। तब उन्होंने मंत्र आरंभ किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभुपाद जी इस प्रकार से शुद्ध भजन गा रहे थे। प्रारंभ में शिष्यों ने मंद और अस्पष्ट भाव से उनका अनुगमन किया, किंतु स्वामी जी ने फिर दोहराया शुद्ध और विज्वलित ढंग से। शिष्यों ने पुनः उनका अनुगमन किया, साहस से भरकर मंजीरे और तालियां बजाते हुए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये प्रभुपाद ने दिया है, इस कौन ने यहीं से लिया सब कुछ। तब स्वामी जी ने मंत्र को एक बार फिर अकेले ही गाया, उनके शिष्य रुके रहे, उनके प्रत्येक शब्द पर एकाग्रचित होकर वे तालियां और करताल बजाते रहे। वे देखते रहे किस प्रकार स्वामी जी वृद्ध अवस्था की प्रज्ञा और भक्ति से जन्म अपने अभ्यंतरिक ध्यान से अपने शिष्यों की ओर देख रहे हैं। स्वामी जी के प्रति प्रेम से वशीभूत होकर वे अपने परिवेश से नाता तोड़कर कीर्तन मंडली के रूप में उनके साथ हो लिए। स्वामी जी बाएं हाथ से उस छोटे मृदंग का पट्टा पकड़े, उसे अपने शरीर से सटाए, दाएं हाथ से उसे बजाते हुए गुण ताल निकालते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस तरह इस मंत्र को गाते हुए आधा घंटा बीत गया, फिर भी स्वामी जी प्रखरता पूर्वक गाते रहे। स्वामी जी आधे घंटे में भी थके नहीं थे, लोग नाच नाच के थक गए थे। वे मंत्र को बार बार दोहरा रहे थे, कीर्तन मंडली उनका साथ दे रही थी और अभिरुचि रखने वाले दर्शकों की भीड़ में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। कुछ हिप्पी गलीचे के सिरे पर पालती मारकर बैठने का अनुकरण करते हुए ध्यान से सुनते हुए तालियां बजाते हुए कीर्तन करने का प्रयत्न करते हुए बैठ गए। अधिकाधिक लोगों के सम्मिलित होने के साथ प्रभुपाद की अंतरंग मंडली और उनके अनुयायी में वृद्धि होती गई। तो बहुत सारे भक्त वहां पर इस मंत्र को सुनकर जुड़ रहे हैं। बहुत प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक प्रवचन में, ज्यादा हीरोगिरी करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, हिंदी प्रवचन बोलते, मेरे को हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसे बोलते ज्यादा हीरोगिरी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान से जपो, कीर्तन करो और यही लोगों को बोलो, इसी से लोग जुड़ जाएंगे, बहुत सारी आवश्यकता नहीं है। सदैव की भांति उनके कीर्तन ने संगीतकियों को भी आकृष्ट किया। मतलब बहुत बड़े संगीतकारी जो थे ना, हारमोनियम गिटार बैंजो बजाने वाले, वो भी आकर्षित हो रहे हैं, कह रहे क्या बात है। इरवन हाल्पन कहते हैं, मैं बांसुरी बनाता हूं और वाद्य यंत्र बजाता हूं, मैं तरह तरह के वाद्य यंत्र बनाता हूं। जब स्वामी जी आए तो मैं उनके पास गया और वाद्य यंत्र बजाने लगा। स्वामी जी ने मेरा स्वागत किया। जब भी कोई नया संगीतज्ञ आता और अपना पहला सुर सुनाता तो स्वामी जी उन्हें अपनी बाएं फैला देते, आइए ज्वाइन करिए प्लीज, है ना। कोई नया आया ढंग 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 बजाने लगा, स्वामी जी प्लीज इधर आ जाइए, है ना। ऐसा प्रतीत होता मानो वे मंच पर चढ़ गए हैं और न्यूयॉर्क फिलहारमोनिका को नेतृत्व करने जा रहे हैं। मतलब पूरे न्यूयॉर्क का नेतृत्व प्रभुपाद कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं ज्वाइन ज्वाइन माय टीम। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर संगीत को स्वामी जी का इस भाव भंगिमा का पता था। आपको मालूम हो ही जाता है जब कोई चाहता है कि आप उसके साथ गाए बजाए, है ना। तो अभी देख लिया यहाँ पर फिर से भाव की बात हो रही है ना, जिस तरह से आप चाहेंगे। जैसे हम कई बार रथ यात्रा निकालते हैं, लोग कहते हैं नाचिए नाचिए बोलिए बोलिए हरे कृष्णा, लेकिन सब लोग ऐसे साथ चल रहे होते हैं क्योंकि जो बोलने वाला उसी का उत्साह बड़ा 20-30% होता है। वो भी खुद उछले कूदे तो सारे लोग उसके साथ साथ में उछलेंगे कूदेंगे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक बार जब हिंदुस्तान में थे तो प्रभुपाद जी के पास में चिट्ठी आई कि भक्त जो है वो लंदन में यात्रा निकालना चाहते हैं। अभी यात्रा निकालने के लिए प्रभुपाद जी के पास इनविटेशन आया, पर प्रभुपाद जी अपने आप को बहुत ही शिथिल और थका हुआ महसूस कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से, जो उनके निजी शिष्य थे, उनसे पूछा, आप क्या बोलते हैं, मुझे इस इन्विटेशन में जाना चाहिए या फिर ऋषिकेश जाना चाहिए, ऋषिकेश में बहुत सुंदर हवा है और मैं वहाँ रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो भक्त बोले कि प्रभुपाद जी देख लीजिए आपकी इच्छा है, जैसे भी आप जाना चाहें। तो फिर जो भक्त हैं उनके सेक्रेटरी वो उनको कहते हैं कि प्रभुपाद मेरे हिसाब से आप प्रचार कार्य को ज़्यादा महत्वता देते हैं, तो जगन्नाथ यात्रा में जाना आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा सुविधाजनक है क्योंकि आप प्रचार में रहते हैं तो आप उत्साही रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये डिसीजन ठीक है और फिर रथ यात्रा में गए। अभी कैसी स्थिति में आ रहे हैं, जब वो बहुत थके हुए हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, और प्रभुपाद जी जब वहाँ रथ यात्रा में पहुँचते हैं तो उनके लिए रथ के ऊपर एक सीट बनाई थी। हम भी देखते हैं अभी 25 जून को रथ यात्रा होगी तो सभी बड़े बड़े जो रथ होंगे, छोटे नहीं, बड़े रथों में प्रभुपाद जी की विग्रह को स्थापित किया जाता है, आज भी वो सीट बनाई जाती है। तो भक्तों ने जगन्नाथ भगवान के आगे प्रभुपाद जी के बैठने के लिए एक सीट बनाई थी। अभी रथ को खींचा जा रहा था और सारे पुलिस वाले जो थे वहाँ पर, तो वो पूरी सिक्योरिटी देखने के लिए आ गए थे, लेकिन भक्तों ने उनको कहा आप साइड हो जाओ, हम यहाँ की सिक्योरिटी खुद संभालेंगे। 10,000 लोगों ने उस रथ यात्रा को ज्वाइन किया। अब प्रभुपाद जी सीट पर बैठकर ना बड़ा ही बेचैनी महसूस कर रहे थे। अभी वृद्ध हैं, गुरु हैं, जगत गुरु हैं, फाउंडर आचार्य हैं, बैठे रह सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे नृत्य करना है, है ना। और ऐसी अवस्था में प्रभुपाद रथ से नीचे उतर आए और नीचे उतर कर आकर क्या किया, उन्होंने ऐसे किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी ने जैसे ही हाथ उठाया ना, जितने भक्त थे वो दीवानगी की सीमाएं पार कर गए, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, और रस्सियां तोड़ के कोई इधर कोई इधर, वो सब गिर रहे हैं। और पुलिस वाले कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम इन लंदन ऐसा हो रहा है कि पूरी जो सिक्योरिटी है वो संभाल नहीं पा रही इस क्राउड को, वरना हम तो बड़े बड़े वो निकालते हैं ना कार्निवल्स, तो उसमें कभी गिरती नहीं है, ये तो गिरे जा रहे हैं। तो पुलिस के जो हेड थे ना, उसने कहा पता लगाओ ये आदमी कौन है जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, कहा अरे ये जो वरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति है ना, ये जब अपने हाथ उठाता है तो पागल हो जाती पब्लिक, फिर ये नीचे हाथ कर लेता, फिर सीधे सीधे चलते हैं हरे कृष्ण है ना, फिर जैसे ऐसे ऐसे कर देता तो लोग हो प्रभुपाद हाथ ऊपर, तो फिर लोग नाचते हैं गिर जाते हैं। तो बहुत ही अजीब सा वहां माहौल हो रहा था। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी से आकर कहा कि देखो इधर आओ। तो वो प्रभुपाद जी का छाता लेके चल रहे थे, उन्होंने कहा हाँ जी बोलो। बोले इनको बोलो ये उस पर जो आपका रथ चल रहा है ना उस पर बैठे हैं चैरियट के ऊपर। तो उन्होंने कहा मैं और प्रभुपाद को बोलूं, प्रभुपाद जाओ चैरियट पे बैठ जाओ, मतलब इतना बड़ा अपराध हो जाएगा ये तो, है ना, गुरु के प्रति। और मैं तो कभी नहीं बोल सकता। तो पुलिस वालों को भी वो कह रहे थे वेट वेट मैं करवाता हूँ कुछ कहता हूँ। तो अब प्रभुपाद जी छाते के नीचे चल रहे थे, प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा छाता हटाओ, है ना, छाता भी हटा दिया, फिर हाथ खड़ा कर दिया, फिर पब्लिक इधर 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 गिर रहे हैं सारे के सारे। वो बोला क्या करें कैसे कंट्रोल करें। अब इन्होंने कहा भाई स्थिति बिगड़ रही है तो बोलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी वाले से किया यहाँ पर, प्रभुपाद जी ने गुस्से से देखा, तो है ना इन्होंने कहा प्रभुपाद वो है ना स्थिति द क्राउड इज अंडर इज आउट ऑफ कंट्रोल प्रभुपाद बिकॉज ऑफ होम, मतलब किसके कारण। तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं प्रभुपाद आपके कारण। प्रभुपाद मेरे कारण? बोले हाँ प्रभुपाद जब आप ऐसे हाथ करते हैं ना तो ये सारे भक्त नाचते हैं कूदते हैं और ये ना जो साइड में रोप्स लगी हैं रस्सियां लगी उसको फांग जाते हैं और फुटपाथ के इधर उधर भाग रहे हैं, गाड़ियां रुक गई हैं इनके कारण भक्तों के कारण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो उसने पुलिस वाले को ऐसे कहा डन टास्क मैंने बोल दिया प्रभुपाद बैठ जाएंगे। और फिर वो पीछे आ गए, फिर प्रभुपाद जी एक कदम आगे चले, फिर कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो पुलिस वाले के बारे में बता रहे थे, वो पुलिस वाले ने कहा इस व्यक्ति को वश में करना मेरे वश की बात नहीं है, है ना, ये व्यक्ति किसी के वश में नहीं है, ये तो सीधा भगवान के वश में है और उन्हीं के संरक्षण में चल रहा है, किसी की सुनने वाला नहीं है। और प्रभुपाद जी इसी प्रकार हमेशा भाव भंगिमाओं में अपने स्वभाव में अपने भाव में अपने अंतरंग स्थिति में सदा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, ये उनकी हर लीला से स्मरण होता है। हमें नाचने के लिए बोलते हैं तो 5 मिनट नाच करके हम थक जाते हैं, धूप लगती है, लेकिन प्रभुपाद धूप में प्रचार करने जाते हैं। तो अगर हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं तो हमको मतलब रात दिन ऐसा खून निकल जाए ऐसा प्रचार करने में लगना चाहिए, है ना। हम घर गृहस्थी संभाल रहे हैं अपने सब लोग और बस कह रहे हैं जी हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं जी, हमने ना नाम ले रखा है, हमारा नाम है प्रशांत मुकुंद दास, है ना, तो दास हैं जी हम, बस दास हैं, घर के घर वालों के दास हैं, भगवान के दास हैं, प्रभुपाद जी के दास हैं, प्रभुपाद के भक्तों के दास हैं। तो फिर वैसा ही कैरेक्टर होना चाहिए। कोई व्यक्ति बोले आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया, बोले आईआईटी से, आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, अच्छा वेरी नाइस, तो फिर तो आप ये सॉफ्टवेयर बना देंगे। अरे नहीं नहीं सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आता, मैं तो रेडियो रिपेयर कर सकता हूँ बस, है। तो बोले ये कैसी इंजीनियरिंग करी आईआईटी से, वैसे ही है, इस्कॉन का भक्त हो, प्रभुपाद जी का शिष्य हो, प्रभुपाद जी उसके शिक्षा गुरु हो, उसके ग्रंथों को वो पढ़ता हो और उसके बाद वो प्रचार ना करता हो, वो मंदिर के लिए जन्माष्टमी में उत्साह ना रखता हो, वो जगन्नाथ यात्रा में नाचता कूदता ना हो और वो बड़ा ही ढीला ढाला हो और जप लेके किनारे बैठा रहता हो, कह रहा नहीं मुझे तो संसार से दुख हो गया है, मेरा तो मन ही नहीं रहता, मैं तो उत्साह ही नहीं रहता, लोगों के व्यवहार देख के मेरा तो मन ही खत्म हो गया है, तो वो प्रभुपाद जी का शिष्य कभी नहीं है, उसने कभी आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, उसने इस्कॉन से कभी डिवोटी नहीं बना हो, उत्साही भक्त। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म भावना, उत्साह हमेशा बना रहे व्यक्ति का। और इसलिए इतने उत्सव है हमारे यहाँ, गुंडीचा मार्जन उत्सव, रथ यात्रा उत्सव, रामनवमी, जन्माष्टमी, अनेकों उत्सव। और उत्साही रहने के लिए क्या जरूरी है, उत्सव है और भक्त है उनके साथ में कीर्तन करें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मालूम ही हो जाता था जब कोई चाहता है कि कोई आपके साथ गाए बजाए। और संगीतिकों की इस आधारभूत संप्रेषणा की विशेषता प्रभुपाद में थी, मैंने तुरंत अपने आप को उनसे संबंधित पाया और इसमें मुझे प्रसन्नता थी। पार्क के विभिन्न भागों में इक्के दुक्के गवैये सदा घुमा करते थे, तो कई पार्क के होते ना ऐसे ही जिनको कहीं काम दाम नहीं मिलता वो घूमते रहते थे गवैये। जब उन्होंने सुना कि वे प्रभुपाद के कीर्तन के साथ गा बजा सकते हैं, अरे वाह मौका मिल गया परफॉर्मेंस का, वो भी कोई सीनियर भाई गा रहे हैं तो आ गए, प्रभुपाद उनका स्वागत करेंगे, तो एक एक करके वे भी आने लगे। और उन्हें पता चला कि एक स्वामी जी हैं जिनकी बड़ी मंडली बन गई है और वो स्वागत भी करते हैं, आइए आइए। तो एक आदमी जिसको कोई नहीं पूछता उसको कोई पूछने लग जाए तो बस मजा आ गया उसको। ऐसे ही कई बार होता है, इस्कॉन में भी वही हाल हो जाता है, जब कोई बाहर होता है ना तो कई जगहों पर फेल हो जाता है, इधर भी फेल उधर भी फेल, हारमोनियम में फेल, मृदंग में फेल, करताल में फेल, और बुक्स में फेल, पढ़ाई में फेल, सब जगह फेल। मंदिर में आता है तो थोड़े समय में वो भगवान की कथा सुनकर भक्तों के संग में इतनी शक्ति उसके अंदर आती है कि वो उत्साह ही रहने लगता है और सब चीजों में धीरे धीरे सक्सेस दिखती है। अब उसको क्या लगता है ये किसके कारण है, हा? किसके कारण है? उसके प्रयास के कारण उसको ऐसा लगता है। अगर उसके प्रयास के कारण था तो वो बाहर पहले क्यों नहीं उत्साही रह पाया, वो क्यों पहले नहीं परफॉर्म कर पाया, वो क्योंकि अभी वो हो रहा है कृष्ण की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी से विदेशों में भक्त पूछते थे कि प्रभुपाद जी हमें भक्ति कैसे प्राप्त हुई, क्या हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए इसलिए हमें भक्ति मिली है? तो माधुर्य कादंबनी पुस्तक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्ति महारानी कहती है कि मैं अपनी निजी इच्छा से किसी व्यक्ति के पास जाती हूँ, आई गो बाय माई फ्री विल। जैसे हमारी फ्री विल है, भगवान से आई है, भगवान की फ्री विल है, तो ऐसी भक्ति महारानी की भी एक फ्री विल है। भक्ति महारानी ये नहीं कहती कि आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, तिलक धारण करेंगे तो मैं आऊंगी। वो कहती है आपको ये करना है, लेकिन इसके बाद भी मेरी फ्री विल है, मैं आना चाहूं तो आऊं, नहीं आना चाहूं तो नहीं आऊं। इसलिए कई बार हम प्रोसेस फॉलो करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति महारानी कह रही है मेरी फ्री विल है, निजी आजादी है। तो प्रभुपाद जी से भक्त पूछते थे, फिर वो भक्ति की निजी आजादी हो गई और हम पिछले जन्म में ऐसे कर्म आप कह रहे हैं कि किए नहीं जिसके कारण हम भक्त बन गए, तो फिर किस कारण से हम भक्त बने? तो प्रभुपाद जी कहते थे आपके पिछले जन्मों के कर्म से आपको यह सुकृति प्राप्त हुई कि आपका मेरे से क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, संबंध स्थापित हुआ, आप मुझे मिल पाए। लेकिन ये मेरी इच्छा थी, है ना, ये मेरी कृपा थी जिसके कारण आप भक्त बन पाए। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। सुकृति से हम इस्कॉन तक आ सकते हैं, लेकिन हम भक्त बनेंगे भक्त की कृपा से। क्योंकि भक्ति रहती कहाँ है? कृष्ण के चरणों में, और कृष्ण के चरणों में रहते हैं भक्त, और भक्त के हृदय में रहती है भक्ति, और भक्त जब प्रसन्न होता है तो भक्ति महारानी उस व्यक्ति के पास चले जाती है, है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्या कि हमें भक्त की सेवा करना, भक्त के अपराध से बचना, वैष्णव अपराध से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सब कुछ करते रहें और सोचें कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल है, बस इस शरीर तक की हो सकता है, हमारे नाम, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान हम खरीद लें, हम किसी को वशीकरण मंत्रों के द्वारा हम भक्त कहलाने लगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जब ये देह परिवर्तन होगा तो हमारी सुकृतियां इतनी नहीं होंगी कि हम दोबारा किसी भक्त से मिल सकें। हमारे अपराधों के कारण हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जो कि नीचे की योनि होगी। ऐसे मैंने एक बार किसी ऐसे पूछा था वृंदावन में कि ये राधा कुंड में कछुए क्यों हैं, ये तो बहुत महान होंगे और चतुर्भुज भी हैं, है ना, चार पैर है ना उनके, से ये तो चतुर्भुज रूपधारी हैं, तो ये तो वैकुंठ के लोग हैं ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वैकुंठ के नहीं, इसी पृथ्वी के हैं। क्यों? कहा क्योंकि ये वो भक्त हैं जो वृंदावन तो आते थे लेकिन धाम अपराध करते थे, वैष्णवों के साथ तो आते थे लेकिन वैष्णव अपराध करते थे, नाम जप तो करते थे परिक्रमा करके लेकिन नाम अपराध करते थे। वो सारे अपराध इतने इकट्ठे हो गए कि वृंदावन तो मिला, मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, वो इच्छा तो पूरी करी लेकिन किस रूप में करी, कछुए के रूप में, है ना, चार पैर वाला कछुआ। अभी ट्रांसेंडेंटल जगह पे रह रहा है लेकिन है कछुए के रूप में, आप भजन नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपराधों से रहित होकर कर अपने भजन को कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ऑफेंसिंग ऐसी लगाएं कि हमसे ऑफेंसेस ना, ऑफेंस होती है ना, यहाँ पर एक पौधा लगाया उसके चारों तरफ ऐसी लगा दी है फेंसिंग कि हम ऑफ द फेंस ना जा सकें, वरना एक बार ऑफ द फेंस गए तो बस पत्तियां कोई भी बकरी खा जाएगी हमारी, कोमल पत्तियां अभी अभी निकली है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान दें। इसमें आगे कहते हैं, एक सेक्साफोन बजाने वाला केवल इसलिए आया कि वहां एक शक्तिशाली ताल और लय निकालने वाला वर्ग था। तो एक सेक्साफोन, सेक्साफोन होता है वो ऐसे करके बजाते हैं, ट्रम्पेट से थोड़ा सा अलग होता है, देखा है आपने सेक्साफोन ऐसे बजता है, ऐसे बजाते हैं। वो बजाने वाला इसीलिए आया क्योंकि वहां लय और ताल निकालने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था, मतलब वो एक नया व्यक्ति भी प्रभुपाद जी को शक्तिशाली मानता है। इरविन हाल्पन की तरह के अन्य लोगों की ये इच्छा ध्वनि वाली कोई आध्यात्मिक चीज प्रतीत हुई। गवैयों के सम्मिलित हो जाने से कीर्तन में इधर उधर से राहगीर भी आने लगे। प्रभुपाद टेक और वृंद गान दोनों गाते आ रहे थे और जब लोग सम्मिलित हो उनमें से बहुत से टेक गाने लगे थे। इससे मंत्र का निरंतर वृंद गाने के रूप में चलने लगा। तीसरे पहर जन समूह बढ़कर 100 से अधिक हो गया। कितने लोग हो गए? एक प्रभुपाद जी थे, कितने हो गए? 100। उनमें एक दर्जन लोग ऐसे थे जो अपने आप को आप कोंग के साथ बोंगो ढोल और बांस की वंशियां, धातु की बांसुरियां, मुंह के बाजों, काट और धातु के कटखटों, तंबूरों, गिटारों को बजाते हुए प्रभुपाद का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। तो सब कोशिश कर रहे थे कि हमें इस आदमी की मदद करनी है, इस व्यक्ति की मदद करनी है। ये शक्ति वो आंख बंद करके सिर्फ मृदंग पे और करताल पे बजा रहे हैं और बाकी लोग कैसे बजा रहे हैं, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हम कैसे हैं, हम लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, लोग हमसे जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसे, प्रभुपाद आंख में बस कीर्तन कर रहे हैं, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। इसीलिए जब हम कीर्तन कर रहे हैं, जब हम प्रचार कर रहे हैं, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि मेरे श्लोक का आगे पीछे कितना हुआ, मेरे कीर्तन की ध्वनि आगे पीछे कितनी हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा भाव कितना ज्यादा था, क्या मैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा था या जनता की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। अगर मेरा कीर्तन जनता की प्रसन्नता के लिए, तो वो कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, थोड़े दिनों बाद वो भी बंद हो जाएगा और लोग भी चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है, तो मैं भी कृष्ण से जुड़ा रहूंगा और लोग भी हमसे जुड़े रहेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य को करें, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो प्रसाद बनाना हो, चाहे वो डीटी वर्शिपिंग हो। इरविन हाल्पन आगे कहते हैं, पार्क प्रतिध्वनित हो रहा था, गवैये मंत्रों को बहुत सावधानी पूर्वक सुनते थे। जब स्वामी जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते थे, तो कभी कभी दो अक्षर वाले कृष्ण तीन अक्षर वाले कृष्णा जैसे सुनाई पड़ जाता था। तो ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें, यहां पर कृष्ण जो है उनका दो अक्षर का शब्द है। पद्म पुराण कहता है द्वातिस अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम प्राजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। 32 मतलब 32 द्वातिस अक्षरम मंत्रम, ये जो मंत्र है ये 32 अक्षर का बना हुआ है। षोडश नाम, इसमें 16 नाम है हरे कृष्णा, लेकिन अगर हम इसको कृष्णा कर देते हैं तो ये तीन अक्षर का बन जाता है और फिर ये 32 अक्षर मंत्र नहीं रहता। तो जब करते वक्त कई लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो कितने वर्ड बढ़ गए इसके अंदर। ये फिर 32 अक्षर मंत्र षोडश नाम कान्वितम नहीं रहा, ये तो कुछ और ही बन गया। तो इस तरह से कृष्णा शब्द से कई बार भगवान कृष्ण द्रौपदी को संबोधित करते हैं, द्रौपदी का नाम है कृष्णा, है ना। लेकिन फिर भी भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव देखते हैं, व्यक्ति का भाव ग्राही जनार्दन है तो वो भाव देख लेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करें कीर्तन करते वक्त, जप करते वक्त हमें बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स नॉट रामा, इट्स नॉट कृष्णा, है ना। तो फिर द्वातीय अक्षर मंत्र से कई उच्च अक्षर बनता है। तो कीर्तन में कभी कभी ऐसा होता है और भक्तों को भी वहां तीन अक्षर सुनाई पड़ रहे थे। प्रायः ये पहले पद में होता था और गवैये उसी को वास्तव में पकड़ लेते थे। स्वामी जी एक विशिष्ट ढंग से उसका उच्चारण करते थे, गवैये बहुत ही सावधानी पूर्वक स्वामी जी के उस ढंग को सुनते थे और हम ऐसा अनुभव करने लगे कि उसी एक संक्षिप्त वाक्य को स्वामी जी विभिन्न लयों में गा रहे थे, किंतु हम उसी नियमित लय का ख्याल करने लगे जैसे कोई समूह वादन के संचालन या प्रेम गीत के मुख्य गायक को ध्यान में रखता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तन करते वक्त यहां से हमको सीखना चाहिए कि जो लीडिंग सिंगर है उसको ओवरलैप ना करें, है ना। कई बार क्या होता है, जो कीर्तन कर रहा होता है वो इतने भाव में आते हैं कि जब वो कीर्तन कर रहा होता है तो हम भी उसके साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। लेकिन कीर्तन का तरीका है, जो कीर्तन लीड करता है वो कीर्तन कर रहा है, उसके बाद के लोग उसको दोहराते हैं। कीर्तन लीड करने वाले के साथ ओवरलैप नहीं करना चाहिए ना कभी भी, और उसे अपराध भी होता है और उसका म्यूजिक भी खराब होता है। आगे कह रहे हैं, किंतु हम उस नियमित लय का ख्याल करने लगे जैसे कोई समूह वादन के संचालक या प्रेम गीत के मुख्य गायन करते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, लय को, जो व्यक्ति लय गा रहा है ना उसी लय में गाना चाहिए। वो गा रहा है किसी और टोन में और आप नहीं गा सकते हैं तो इतनी ध्वनि नीचे करके गाइए कि उसका म्यूजिक कीर्तन खराब ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सुर लग नहीं पाता और असुर लग जाता है हमारा, है ना, और वो असुर के कारण वो कीर्तन बिगड़ जाता है। ये सचमुच बहुत आनंद प्रद था, लोग एक दूसरे को कोहनियां मारकर कहते, अरे देखो हम लोग किसी सांस्कृतिक वाक्यांश के विशिष्ट सूक्ष्म उच्चारण को पकड़ लेते हैं और धराते हैं। जिसे जन समूह संभवतः नाचने और गाने के उत्साह में ग्रहण करने में चूका जाता था। ये कभी कभी स्वामी जी एक अतिरिक्त ताल जोड़ देते थे, ठीक उसी तरह जैसे मुख्य ढोलकिया, जो इस समय स्वामी जी स्वयं थे, ढोल पर एक अतिरिक्त थाप दे देते हैं, लेकिन हर बार इसका कुछ अर्थ होता था। तो प्रभुपाद जी हर बार कुछ चेंज कर देते थे, कीर्तन करते करते उसमें हरे कृष्णा ऐसे कर देते थे, अभी थाप भी चेंज कर देते ढाल, उससे सारे लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते। पहली बार हो रहा था ना, तो कह रहे हम कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने कुछ संगीत विशारदों से इस विषय पर बात की और हम इस बात पर सहमत हैं कि स्वामी जी के मस्तिष्क में सैकड़ों राग होंगे। उन्होंने बोला कि स्वामी जी को ऐसे गायक नहीं थे, लोग बोलते हैं प्रभुपाद ऐसी सिंपल सिंगर थे, वो राग वाग नहीं गाते, कह रहे हैं उनके मस्तिष्क में सैकड़ों राग विराजमान होंगे, ऐसा कई संगीत विशारदों ने बोला। नॉर्मल व्यक्ति नहीं, संगीत विशारद एक ऐसी 8 साल 9 साल पढ़ने के बाद व्यक्ति को संगीत विशारद की उपाधि मिलती है। वो व्यक्ति कह रहा है कि इस व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेकों राग हैं, जो वे संसार के दूसरे सिर से सच्ची साधना द्वारा सीखकर वापिस आए हैं। यहाँ नहीं सीखा है, संसार के किसी दूसरे गंधर्व लोग जाकर के सीख कर आए हैं। इतने सारे लोग वहां केवल धर्म के अभिप्रेषण को अपनी संगीत प्रतिभा का माध्यम देने को आते थे। ओहो, इस पवित्र साधु को सुनो तो लोगों को वास्तव में विश्वास हो गया कि कोई असामान्य कौशल प्रदर्शन हवा में संचारण जैसी किसी अनोखी घटना की झलक दिखाई पड़ने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ आसमान में कुछ विशालक होने वाला है। होता है ना, हम टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें नीचे कुछ लीला हो रही है और ऊपर से देवी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी का माहौल ऐसा, पुष्प नहीं गिर रहे हैं लेकिन माहौल ऐसा होता था कि हाँ सच में देवी देवता उनके प्रसन्नता में गान गा रहे हैं। किंतु स्वामी जी जो कुछ कर रहे थे, जब उसकी सरलता लोगों के समझ में आ गई तो वास्तव में वही सही रास्ते पर आ गए। चाहे वे जीवन पर्यंत उनका अनुगमन करने की प्रतिबद्धता स्वीकार करने को प्रेरित हो या केवल उनकी सराहना करना और किंचित मात्र में उन्हें सम्मान देने की प्रेरणा अनुभव करते हो। और ये भी मनोरंजन था कि लोग किस तरह कीर्तन को अपने अपने ढंग से ले रहे थे। कुछ लोग सोचते थे केवल प्रस्तावन थी, कुछ लोगों का विचार था कि ये मुख्य वस्तु थी, कुछ लोगों को संगीत पसंद था तो कुछ लोग उसकी काव्यात्मक ध्वनि पसंद करते थे। फिर आगे एलन गिन्सबर्ग कहते हैं, इससे पहले समय समाप्त हो जाए कि इससे रिलेटेड एक लीला मुझको याद आई है तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी की सुंदर, प्रभुपाद जी के एक भक्त हैं जिनका नाम है सोलिनेस इंद्रदुम स्वामी महाराज। तो इंद्रदुम स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, उनकी ट्रैवलिंग डायरी है ना। तो ट्रैवलिंग डायरी में वो लिखते हैं, वो ट्रैवल करते हैं और जहाँ जहाँ लीलाएँ होती हैं वो लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा कि एक बार एक फ्रांस के एक मंदिर में संडे के दिन, संडे लव फीस्ट जो होता है, सैटरडे लव फीस्ट या संडे लव फीस्ट, उसमें प्रचार करके लेक्चर दे रहे थे। तभी सभी भक्तों ने देखा कि लेक्चर समाप्त होने के बाद में महाराज उठ करके, इंद्रदुम स्वामी महाराज उठ करके चले गए। तो एक व्यक्ति आया रोता हुआ, और जैसे प्रभुपाद जी का मूर्ति है यहाँ पर विराजमान विग्रह, वो आकर के प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने आया और आकर ना रोने लगा, अरे स्वामी जी आप मुझे भूल गए, आप मुझे अकेला छोड़ गए, स्वामी जी आप कहाँ हैं, स्वामी जी बोलिए। तो स्वामी जी कुछ बोले नहीं, तो 2-4 भक्तों ने कहा स्वामी जी नहीं है ये, स्वामी जी का विग्रह है, मूर्ति है। मतलब कहा स्वामी जी ने 1977 में अपने शरीर को समाप्त कर समाधि गृह ली और वो भगवत धाम प्रवेश कर गए। अच्छा, और जोर जोर से रोने लगा, स्वामी जी आप मुझे अकेला छोड़ गए, और बहुत बुरी तरह से रोने लगा। तो सब बोले क्या हुआ क्या हुआ, बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा पानी पिलाया उनको। कहा क्या हुआ ऐसा? कहा कि ये जो स्वामी जी हैं, मैं इनको 15 साल की उम्र में मिला था, 15 ईयर्स, और अभी वो वृद्ध व्यक्ति था, 15 साल की उम्र में मिला था। और कहाँ मिला था, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, टॉमकिन स्क्वायर पार्क, वहां मैं उनको मिला। और मिलने के बाद में उन्होंने अपने कीर्तन के दौरान मुझे प्रेरित किया कि मैं उनके नजदीक आकर बैठूं। और मैं अपने स्कूल की पढ़ाई से बड़ा ही ज्यादा दुखी रहता था, बहुत ज्यादा बर्डन था, और मैं प्रभुपाद जी के समीप आकर उनके कीर्तन की ध्वनियों को सुनने में बड़ा ही आनंद का अनुभव करने लगा। वो मुझे प्रेम से अपने साथ कमरे में भी ले जाते, मुझे प्रसाद अपने हाथ से खिलाते, मेरे सिर के ऊपर ऐसे करके मालिश भी करते, ऐसे कहते मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कीर्तन करना, ठीक है आते रहो। तो फिर भक्तों ने पूछा फिर आप जाते थे? कहा हाँ, मैं उनके मैचलेस गिफ्ट स्टोर फ्रंट सब जगह तक उनके साथ रहा। उसके बाद कुछ समय बाद मेरी माँ को पता चल गया कि मैं एक स्वामी जी के साथ हूँ जो साधु बना रहे लोगों को। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम नहीं जाओगे, तुम्हें अपने करियर के प्रति, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, और फिर मुझे उनसे विलग कर दिया। बोले फिर आपकी माँ से स्वामी जी मिलना चाहते थे? बोले हाँ, एक दिन मेरे प्रभुपाद जी ने मुझसे कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ, मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगा और अपने साथ भगवत धाम ले जाऊंगा। है ऐसा, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फिलॉसफी भगवत धाम पता नहीं था, बस उसे स्वामी जी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। इतना ज्यादा कहा उन्होंने, कई बार मैं भूखा होता था स्कूल से, मैं अपने घर ना जाकर, मुझे स्वामी जी का आकर्षण इतना था, अपनी माँ से अधिक प्रेम स्वामी जी के साथ था। वो मुझसे पूछते थे क्या तुम भूखे हो, और वो मुझे प्रसाद बना करके अपने हाथ से खिलाते थे, और बोले वो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा मातृत्व प्रेम प्रदान कर रहे थे। और जब कभी कभी वो व्यस्त होते थे तो उनके साथ के भक्त कहते थे स्वामी जी बिजी हैं, तुम यहीं बैठो, तो वो टाइपिंग कर रहे होते थे और उनकी टाइपिंग की ध्वनि सुनकर मुझे ऐसा लगता था वो हारमोनियम बजा रहे, कीर्तन कर रहे हैं। और मेरी माँ एक कंपनी में टाइपिस्ट थी, और वो भी घर में जब टाइपिंग करती थी तो मेरी नींद उड़ जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कब ये ठक ठक की आवाज बंद होगी। लेकिन जब मैं स्वामी जी के नजदीक बैठकर टाइपिंग सुनता था, ऐसा लगता था कि ये हारमोनियम बज रहा है, कीर्तन बज रहा है, मतलब उनके टाइपिंग में भी वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे थे, इसलिए टाइपिंग की आवाज भी लोगों को आकर्षित कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो वो व्यक्ति से पूछा फिर क्या हुआ? कहा फिर मेरी माँ ने मेरे को मना कर दिया कि अब तुम्हें कॉलेज जाना है, स्कूल बंद, अब तुम जो है बिल्कुल भी स्वामी जी के पास नहीं जाओगे। एक दिन मैं फिर भी अपनी माँ से अलग होकर स्वामी जी के पास आया तो देखा वहां पर ताला लगा था। मैंने पूछा स्वामी जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा स्वामी जी विश्व भ्रमण पर गए और अभी वो बाद में आएंगे। कई दिनों तक मैं जाता रहा लेकिन स्वामी जी वापस नहीं आए, और उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया। फिर कई वर्ष बीत गए, मेरा विवाह हुआ, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और बच्चे जो है मुझे भूल गए, और मैं उनको पढ़ाने में, इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में बहुत सोच रहा था, मैं बड़ा अच्छा अपना पेरेंटिंग टिप्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया था कि अगर मैंने बच्चे को अध्यात्म नहीं दिया तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि एक वृक्ष के संस्कार रूपी जड़ें बहुत जरूरी हैं, जो कि दिखती नहीं है, दिखता तो तना और पत्तियां हैं, जो कि होती है इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, MBA, MCA, लेकिन जो नीचे की जड़ें हैं वो है संस्कार, वो है भगवत प्रेम, वो है भक्ति। वो अगर नहीं है तो वो वृक्ष कभी भी हरा भरा फल फूल प्रदान करने वाला नहीं होगा। तो इस तरह से मैं जो है बिल्कुल सूख गया था, और मेरे जो बच्चे थे उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और दुखी होकर के एक दिन मैं कुछ पैसे लेकर घर छोड़कर निकल गया। जब मैं निकला तो मैंने उन पैसों से किसी आध्यात्मिक पुस्तक को अपने हाथ में उठाया और उस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किया, और उसमें मुझे इतना आकर्षण लगा, मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो उसमें वही स्वामी जी थे जो 15 वर्ष की अवस्था में मेरे को कहते थे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवत धाम ले चलूंगा। अब इस पुस्तक को पढ़कर मुझे समझ आया रियली, ओह ये होता है भगवत धाम जाना। और मैंने स्वामी जी से मिलना चाहा, और पता चला कि इस्कॉन का सेंटर फ्रांस में यहाँ है, तो मैं दौड़ा दौड़ा आया और स्वामी जी से मिलना चाहता था। नीचे गार्ड से पूछा क्या स्वामी जी हैं, तो गार्ड को लगा कि वो इंद्रदन स्वामी पूछ रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ लेक्चर दे रहे हैं। और मैं दौड़ा दौड़ा आया, वाह स्वामी जी मिल गए, स्वामी जी मिल गए, स्वामी जी मिल गए। लेकिन जब मैं आया और मैंने स्वामी जी की तरफ देखा तो स्वामी जी कुछ बोल नहीं रहे थे, और फिर उसके बाद में मैं काफी देर तक वहां खड़ा देखता रहा, लेकिन स्वामी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। और लोगों ने कहा ये तो शरीर छोड़कर जा चुका है, ये तो समाधिग्रस्त है, ये तो भगवत धाम चले गए। तो मैं रोने लगा और मैंने कहा स्वामी जी आपने तो वादा किया था मुझे भगवत धाम ले जाएंगे, आप मुझे छोड़कर चले गए। और वो इस तरह से कहता हुआ आप मुझे छोड़कर चले गए, आप मुझे छोड़कर चले गए, मंदिर से बाहर चले। तो इंद्रन स्वामी महाराज ने कहा मैंने कई बार कोशिश की उसको बुलाएं जोड़े, लेकिन वो व्यक्ति प्रभुपाद जी से बहुत ज्यादा अटैच था, वो सुनने को तैयार नहीं था कि मुझे स्वामी जी ही चाहिए। तो जो भी हुआ हो, लेकिन ये स्वामी जी का आकर्षण है, प्रभुपाद जी का प्रेम है, कि एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में आने के बाद भी उनके उस प्रेम को भूल नहीं पाया। हम तो माँ बाप का प्रेम भूल जाते हैं, गुरुजनों का प्रेम भूल जाते हैं, प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति प्रदान की वो प्रेम भूल जाते हैं। तो आज हमें आज की प्रभुपाद लीला मेरे से यही सीखना चाहिए कि जो कुछ भी करें वो कृष्ण प्रसन्नता के लिए करें, ताकि हम प्रभुपाद जी के सच्चे अनुयायी बन सकें। हरे कृष्णा।